आदाब, मैं हूँ वजन कुमार, आप सुन रहे हैं मधुबनी मोबाइल। अभी मैं ज़ुबैर ख़ान सईदी साहब, सहाफ़ी भी हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं, उनसे बात करते हैं कि इनका जो बिहार दौरा है उसमें तालीमी तौर पर क्या देखा, क्या समझा और क्या ये पैगाम देना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत मुतासिर हूँ इस इलाके से, बिलखसूस तालीमी जो पैटर्न है, लोगों का जो तरीक़ेकार है। जहाँ जहाँ मैं गया, नेपाल की सरहद से लगा हुआ जो बिहार है, अररिया से लेकर और इधर बरगनिया तक, मधुबनी, हाँ इधर मैंने जो इलाका देखा, उसके अलावा अभी हालिया मैंने दरभंगा में जो दारुलूम अहमदिया सलफिया है वहाँ मुजाकरे इल्मिया भी एक हुआ था, तो वहाँ मुझे मकाला पेश करना था कौमी यकजहती के अंदर तालीम की अहमियत के ऊपर मेरा मौजू था। वहाँ मैंने देखा कि उनका जो मुजाकरे इल्मिया जो दो दिन का उन्होंने रखा था, उसमें जिन लोगों का सिलेक्शन था वो तमाम लोग ऐसे थे जो अपनी अपनी फील्ड में मोतबर हैं और कंट्रोवर्शियल लोग बिल्कुल भी नहीं थे, और उन्होंने हमेशा इत्तेहाद की, इत्तेफाक की बातें वहाँ हुई। और सबसे बड़ा जो उनका इंतज़ाम था, जिस काम के लिए आमतौर से अहले हदीस बदनाम है कि उनके यहाँ इंतज़ाम अच्छा नहीं होता है, लेकिन दारुल उलूम अहमदिया सलफिया के मुंतज़मीन ने जैसा इंतज़ाम किया वो बहुत ही इम्प्रेसिव था। वॉलंटियर हर जगह मौजूद थे, उनको फौरन लोगों को देखते, पूछते और उनका ख्याल रखना, किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो, तो उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने बच्चों की तरबियत बड़े अच्छे अंदाज में की है। ये सब तरबियत का ही नतीजा है। और जिस हाईटेक अंदाज में उन्होंने उसको पूरा कवरेज हुआ, और फिर उनका जो उन्होंने अपने अहमदिया जो सलफिया का जो चैनल है वहाँ उसको नशर किया यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जिस अंदाज में स्ट्रीमिंग इसकी इतनी शानदार थी, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा था, जिन टेक्निक का उन्होंने इस्तेमाल किया, तकनीक का और कैमरों का जो इस्तेमाल किया, वो बहुत ही ऐसा लगता है कि मतलब जिन लोगों के हाथ में इसका निज़ाम है वो जदीद तमाम किस्म के हथियारों से लैस हैं और बहुत अच्छे हैं। इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। हालांकि और एक बड़ी ख़ास बात, दारुल उलूम इमदादिया सलफिया के जो नाज़िम हैं इस वक्त, वो एक इंजीनियर हैं माशाल्लाह। उनके छोटे भाई जो उनकी नियाबत करते हैं वो MBBS और MD डॉक्टर हैं, और ऐसे जदीद तालीम याफ्ता लोग जो मदरसा चला रहे हैं, चूँकि उनको वरसे में मिला है और उन्होंने अपने दादा की परदादा की जो विरासत है उसको संभाला है और इतने अच्छे अंदाज में संभाला है, तो ये तो एक इदारे की बात हुई। और बिलखसूस मैंने छोटे छोटे जो इदारे देखे यहाँ पर जो नेपाल की सरहद पर हैं,
ये आपने जो देखे हैं जो देहाती एरिया में जो मदारिस हैं या कोई भी मकतब है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उसमें क्या देखा और क्या उनके लिए बेहतर होगा कि वो उसी वसाइल में जो उनके आसपास है उन वसाइल का इस्तेमाल करके क्या बेहतर कर सकते हैं इस नस्ल के लिए?
मेरे हिसाब से जो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पर माशाल्लाह इदारे जहाँ जहाँ भी हैं डेडिकेशन असातिज़ा का है, तलबा भी खूब आ रहे हैं और तमाम चीज़ें हैं। बस थोड़ा सा एक अगर एक इस्लाह का जो मुझे वो पहलू लगा कि उसको अगर वो मिड डे मील के नाम पर कोई एक शुरुआत करें कि बच्चे वहाँ पर और ज़्यादा अच्छे अंदाज में आएँ, क्योंकि मिड डे मील एक सरकारी स्कीम है, लेकिन इसको अगर हम प्राइवेटली भी इसको हम शुरू करें, क्योंकि जो बच्चे सुबह सुबह आ रहे हैं उनको भूख लग जाएगी, क्योंकि बड़े इंसान की भूख लग जाती है, तो उनके लिए एक बीच में एक ब्रेक हो मिड डे मील का प्राइवेट स्कूलों में, मदरसों में जो हम जो कायम किए हुए हैं, उससे एक फ़ायदा तो ये हुआ कि जो तलबा हैं कि उसके लालच में भी आएंगे और उनका जो डेडिकेशन है वो मज़ीद बढ़ेगा। हालांकि बच्चे मैंने देखा बड़ी मेहनत कर रहे हैं और असातिज़ा भी उनके ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं, वक्त की पाबंदी भी खूब है यहाँ पर, हाज़िरी भी खूब है, लेकिन उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए, उसके अलावा एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल नापसंद है वो कसरत नहीं होनी चाहिए कि आप देखें कि कितने किलोमीटर किसी मदरसे में, नहीं मदारिस की कसरत नहीं होनी चाहिए। हर आदमी चाहता है कि अपना एक इदारा खोल ले, भाई जो मौजूद इदारे हैं उनको आप तकवीत बख्शें। अगर आप एजुकेशन के प्रति आप मुखलिस हैं तो आप दूसरे इदारों को अगर तकबीत बख्शेंगे तो आप एक बेहतर मुस्तकबिल तैयार कर सकते हैं।
शुक्रिया।